शब्दार्थ प्रवेपमाना कांपते हुए धरणी पृथ्वी निशाम्य देखकर उदायुधम धनुष बाण ले करके च भी तम उस राजा को गो गाय सती बनकर उपाद्रवत भागने लगी भीता अत्यधिक डरी हुई मृगी मृगी व हिरणी के समान मृगयु शिकारी द्वारा धृता पीछा की गई। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार एक शिकारी द्वारा पीछे किए जाने पर तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। जिस प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती है उसी प्रकार धरती की कुखी से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथ्वी के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। क्योंकि गाय अवध्य है अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथ्वी के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए। किंतु पृथ्वी इस रहस्य को समझ गए अतः उन्होंने गोरूप पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सग्रजातम सहगणम रघुनाथम नितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश नमों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग ने जो चतुर्थ स्कंद भागवत में पृथ्वी महाराज के राजत्व के शुरुआत जिसमें उन्होंने पृथ्वी को दमन कर रहे हैं ये प्रसंग सुन रहे हैं, तो आज के श्लोक में ये बताया गया कि धरती माता डर गई, केवल डर नहीं गई, डर करके भागी। ऐसे भागी उसको तुलना किया गया एक हिरणी के साथ। हिरणी के साथ, हिरणी जब कोई शिकारी के द्वारा पीछे किया जाता है तो जिस प्रकार डर के मारे वो भागती है, माता पृथ्वी ने गाय बन करके इस प्रकार भागी। इस श्लोक में ही बताया गया प्रवेपमाना धरणी। बेपमाना, बेपमाना शब्द हम भगवत गीता में देखते हैं एकादश अध्याय में। एत श्रुत्वा वचनम केशवस्य क्या है, एत श्रुत्वा वचनम केशवस्य बेपमानः किरीटी कृतांजलिर वेपमानः किरीटी कृत अंजलि हाथ जोड़कर सब हित भीत प्रणम्य बारंबार प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर कृतांजलि होकर के थर 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 कांपने लगा अर्जुन। जब भगवान ने बोल दिए कालो हम लोकख्यकृत प्रवृद्ध हो, मैं काल बनकर के आया हूं, सारे को सफाया करूंगा, प्रत्यनिकेश योद्धा कोई नहीं बचेंगे, सबको मारूंगा, मैंने इतने बड़े बड़े भीष्म द्रोण अनेक जितने सब है कर्ण आदि सबको। तो भगवान के इस काल रूप को देख करके अर्जुन जैसे दुर्दश योद्धा भी, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े क्षत्रिय और उनका भक्त, उनके मित्र, उनके सामने जो रथी के रूप में बैठा है वो ड्राइवर के रूप में खड़े हैं, लेकिन भगवान के काल रूप देख करके उनका ये हाल हो गया, थर 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 कांप माना। केवल सुन करके इतस्तुत्वा वचनम केशवस्य, भगवान केशव के वचन को सुन करके थर 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 कांपने लगी रथ के ऊपर ही। कृतांजलि बेपमान किरीटी, हाथ जोड़कर ऐसे कांपने लगी और सब हित भीत प्रणम्य, बारंबार डर डर के मारे प्रणाम करने लगे। तो ये तो बेपमान किरीटी ने जो डर रहे थे, यहां धरणी का और ज्यादा कांपना, प्रबेपमान प्रकृष्ट रूपेण बेपमान और ज्यादा कांपती हुई। धरती माता इतने क्यों डर गई? इसमें प्रसंग इस प्रकार चल रहा है कि महाराज पृथु अपने राज्य शुरू करना जा रहे हैं। शुरुआत उनके राजा के रूप में जो दायित्व है उसको निभाने के लिए भी राजगद्दी में बैठे सब सुगत बंदी उनको प्रशंसा किए और उनका करोनेशन हो गया, उनका इंस्टॉलेशन शपथ पाठ वगैरह कर लिए। करने के बाद अभी सारे प्रजा भूखे में पीड़ित होकर के आकर उनके सामने बोले हम तो मर जाएंगे, कई दिन से खाए नहीं, अन्न नहीं। उनका इसी प्रकार स्थिति देख करके पृथ्वी महाराज ने बोले सबसे पहले मैं राजगद्दी में बैठा ये करना पड़ रहा है भाई, मेरे प्रजा सब अन्नहीन में इतने रो रहे हैं, सब दुखी है, भूखे हैं, क्या कारण है? ये लोग तो काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, फिर अन्न क्यों नहीं मिल रहा उनको? तो पृथ्वी महाराज ने सोचने लगे, भागवत में बताया गया, उन्होंने बहुत उनके बात को सुने, सुन करके बहुत गहराई से सोचे इस बात को, सोचे कि क्या कारण हो सकता है। बिना बिना सोचे अगर काम किया जाए तो उसमें गलती हो सकती। पृथ्वी महाराज ने बिल्कुल समय दे करके सोचे कि मेरे प्रजाओं की तरफ से कुछ गलती है कि और किसी प्रकार से गलती है, कारण से अन्न पैदा नहीं हो रहा, तो पता लगा लिए कि उनका तो गलती नहीं, पहले कभी कोई गलती हुआ होगा, उसी को पकड़ करके धरती ने जो उनका अन्न आदि जो है उनको देता ही नहीं, अपने अंदर रखा छिपा करके देता ही नहीं। कब क्या देखें, कब कोई ऐसे गाय होते हैं और दूध को अपने अंदर रख लेते हैं, दूध निकलेगा नहीं, ऐसे कर देते हैं उनका होता है। तो इस प्रकार गाय का भी इस प्रकार कर सकती है। तो इस प्रकार माता धरती ने अन्न को पकड़ नहीं होने देती। तो जब ये कारण महाराज पृथ्वी को पता चला तो महाराज पृथ्वी ने सोचे कि तो पृथ्वी के ऊपर एक्शन लेने चले, सारे प्रजा इतने पीड़ित हो रहे हैं, मरने जा रहे हैं, वह नहीं दे रहे, तो उनके ऊपर एक्शन लेने लगे। देखिए, कोई अगर माँ का दायित्व तो होता है पुत्र का पालन करना, पुत्र कभी कुछ गड़बड़ कर सकता है कुछ, लेकिन अगर फिर सही होता है तो माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व तो ही पालन करना, अगर नहीं करे तो उनके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ता है। तो महाराज पृथ्वी का राज्य आराम से सबसे पहले ही एक्शन हुआ, इसलिए इतने बड़े प्रख्यात राजा बने, क्योंकि समग्र पृथ्वी के ऊपर एक्शन लिए उन्होंने। सोचने के लायक बात है, कोई शत्रु हो, कोई गड़बड़ी करे, उस पर एक्शन ले, ये कोई शत्रु है, ये पूरे धरती है, धरती के ऊपर कैसे कोई सोच सकता है एक्शन के लिए? इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने समुद्र, इतने क्या क्या, कितने विशाल है धरती जंगल, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है? हम कुछ 100 गज से 200 गज जमीन लेते हैं, इससे कुछ गड़बड़ी हो जाए हम हर कुछ नहीं कर पाते, क्या करेंगे उसमें? तो महाराज पृथ्वी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो समग्र पृथ्वी की चैलेंज किए, और किए नहीं, इस प्रकार चैलेंज किए, उनको एक्शन लेने के लिए चले, धनुष बाण उठाए, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी डर के मारे इतनी डर गई कि ये शब्द लगाया गया उनके लिए कि प्रवीपमान, बाप रे बाप, इतनी भयभीत हो गई। तो इसमें एक बात समझ में आता है, अगर आप शासन करना चाहेंगे, किसी को मेंटेन करना चाहेंगे, तो बिना शक्ति से होना चाहिए, तो भय एक प्रिंसिपल है, बिना भय से कभी कोई संपूर्ण कोई शासन संभव नहीं हो सकता। भगवत में कहा गया है, भगवान क्या कहते हैं, वायु बहता है मेरा भय से, सूर्य तपति मद भयम, ऐसे है ना, मद भयात वाती वायु, मद भयात पति सूर्य वर्षति वर्ष, ये जो सारे काम सब प्रकृति कर रही है वो अपने आप नहीं कर रही है, ये सब आपने सनक है, भगवान के भय के मारे सब कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि बोल भय दिखाए मुझे एक बार, ऐसे नहीं बोले, मैं नजर रखा हूं, इसीलिए प्रकृति काम कर रही है। भगवान गीता में कहते हैं, मया धक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, ये चराचर प्रकृति जो कार्य कर रही है किस लिए, अध्यक्षता, कई इस प्रकार भी अर्थ करते हैं, अख्य मन आंख, अध्यक्ष मन अधिकार पूर्वक, अधिकार पूर्वक आंख रखना नजर, कि कोई कोई काम करते ना लेबर, आप उनको देखो मैं छोड़ दो, सुपरवाइजर नहीं रहे वो तो सो जाएंगे, लेबर का तो वही स्वभाव ही होता है, देसी देखा कोई है ही नहीं, बस ये करे मेरी खाए बैठ जाएंगे, वो तो ढीला देना काम ना, ये सहज स्वभाव, सभी का, हम सभी यही इतने आलसी है, खाली मौका देखें, कोई देख नहीं रहे तो ठग दे, काम ना करे, तो इसलिए हमेशा कोई नजर रखने वाला, कोई अगर मालिक नजर रख रहा है तो देख रहा है तो क्या करें, जब तक बैठा रहता तब तक करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण, मैं अधिकार अधिकारी हूं,
भगवान बोलते मैं अधिकारी हूं, अधिकारी के रूप में मैं नजर रखा हूं, इसी बोलते अध्यक्ष, अधिकार पूर्वक आंख रखा हूं उसके ऊपर। तो जब देखते हैं कि अधिकारी व्यक्ति नजर रखा है तो बेचारे कहां जाएंगे, तो करना ही पड़ेगा। तो सारे प्रकृति फुली एक्टिव है क्योंकि उनके सुपरवाइजर, उनके अधिकारी उनके ऊपर नजर रखा है। मैं अध्यक्षण प्रकृति, अधिकार पूर्वक भगवान बोलते हैं कि मैं अधिकारी हूं, वो सारे के ऊपर नजर रखा हूं, तो इसलिए सब काम ठीक ठाक चल रहा है, दिन रात जो जो होता है सब हो रहा है। वो नजर हटा दें तो हमारा जैसे स्वभाव है, सभी का इसी स्वभाव, सब अपना अपना लकवा मार जाएंगे, सबके कोई काम दाम नहीं करेंगे, आलसी है सब। तो इसलिए पृथ्वी माता का दायित्व है अन्न आदि देना, वहीं दे रही है। जब पृथ्वी महाराज को पता चला तो अपने अधिकार वो दिखाने लगे। ये अधिकार के कारण ही शासन होता है, ये शक्ति और भय। एक बार भय भी भय दिखाए तो फिर चलते रहेगा, उसके डर के मारे सब करते रहेंगे। तो पृथ्वी माता डर गई, कैसे डरी, या उदाहरण देते हैं कि मृग ही ब मृग के उदाहरण क्यों दिए, क्योंकि हिरण जितने सारे प्राणी होते हैं वो बहुत चंचल है, बहुत भागती है, डर के मारे भागती है। क्यों, कोई ज्यादा डर क्यों हिरण को है, वो दूसरे किसी क्यों नहीं है, क्योंकि जितने प्राणी हैं जंगल में उनमें से देखने के लिए सबसे प्यारे हैं हिरण, है ना। नहीं केवल देखने के लिए प्यारे नहीं, उनके रूप जैसे सुंदर है, उनके जो मांसाहारी प्राणी है वो हिरण के मांसों के बड़े पसंद करेंगे, तो उनके मांस खाने के लिए पसंद करेंगे। उनके चमड़ा भी तो काम में आता है, साधु संत का भी, उसके सींग भी काम में आता है। तो जो बड़े कीमती वस्तु है तो उसको बहुत होशियार से सब रखाना पड़ेगा, कई अरे उसके ऊपर किसी नजर तो नहीं पड़ा कि उठा तो न ले। तो हिरण जैसे कीमती, सबसे प्यारे, सबके जो आवश्यकता है, इस प्रकार प्राणी है, तो इसलिए उसके ऊपर सब नजर है। कोई शिकारी जो वन में रहने वाले जंगली लोग हैं, वो जो जंगल से द्रव्य से लेकर चलते हैं, उनका नजर हमेशा रहता है हिरण के ऊपर। हिरण एक शिकार हो जाए तो मांस भी मिलेगा, सिंग भी मिलेगा, चाम भी मिलेगा, सब काम में आएगा। तो बाकी जंतु को शिकार करने के अलावा वो हिरण का पीछा करते हैं, तो इसलिए हिरण ही बात को जानती है, तो इसलिए ज्यादा भयभीत रहती है, कोई शिकारी आया मतलब मुझे छोड़ेगा नहीं, मारेगा वो। तो जब उन्होंने हिरण जब देखती है कि कोई शिकारी उनके पीछे धनुष मार लगे, तो प्राण विकल्प में, को जानता है कि प्राण लेगा आज, क्योंकि मेरा प्राण लेने से उनका काम बनेगा। इसलिए अपने प्राण भय से प्राण बचाने के लिए इतने डर जाती है, वे थर थर कांपती, बड़े द्रुत गति में भागती है। बाकी कोई जानवर इतने उनको पड़ी नहीं, वो शिकारी भी जाएगा बोले उनको मार कर क्या फायदा, दूसरे आदमी शिकार भी इतना इंटरेस्टेड नहीं मारने के लिए जितने हिरण को मारने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हिरण इसलिए शिकारी को देखते ही प्राण भय में भागती है और बहुत डर जाती है। तो ये जो हिरण का जिस प्रकार भय, जिस प्रकार डर, इसी प्रकार डर पृथ्वी की हो गई। पृथ्वी महाराज का ये पराक्रम को देख करके पृथ्वी माता इतने भयभीत हो गई कि उनको टोना दिया गया, रू गई वह। मृग जैसे कोई व्याध उसके पीछा करे तो बिल्कुल वैसे आगे बढ़ती हुई कि किसी प्रकार धरती माता। इस अध्याय के शुरुआत में जो पूछा गया था कि ये बताइए कि ये पृथ्वी गाय के रूप, जो पृथ्वी बहुरूपिणी, ये तो कोई भी रूप धारण कर सकती है, धारण की पहले श्लोक में ही पूछा गया था, तस्मात क्यों पृथ्वी गाय के रूप धारण की, यद्यपि बहुत किसी भी रूप धारण कर सकती थी। रूपा जी ने तात्पर्य की शुरुआत में लिखते हैं, जैसे कोई मनुष्य है उनके माँ के कोख से लेकिन धरती के उधर से तो जागतीय प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, तो किसी भी रूप धारण कर सकती है उनकी क्षमता। तो ये केवल गाय के रूप क्यों धारण की, यही प्रश्न सबसे पहले पूछा गया था। तो इसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए सबसे पहले ये बताना शुरू करते हैं इस श्लोक से कि पृथ्वी एक गोरूप क्यों धारण की, जो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था। तीन प्रश्न पूछे थे पहले श्लोक में, पृथ्वी काहे के लिए धारण की, पृथ्वी महाराज ने उसको दोहन किए कैसे, कौन सा पात्र में दोहन किए, बछड़ा कौन बना, ये प्रश्न पहले पूछा गया था ये अध्याय की शुरुआत में। तो उसका उत्तर अभी यहीं से शुरू करते हैं, पृथ्वी गाय के रूप क्यों धारण की, क्यों धारण की, क्योंकि इतने डर गई प्रवेपमाना, पृथ्वी महाराज का इस उग्र मूर्ति को देख करके वो धनुष बाण उठा लिए मुझे मारने के लिए। उनको पता चल गया कि मेरे गलती है, मेरे गड़बड़ी के कारण प्रजा पीड़ित है। ये जब उनको कारण पता चला तो महाराज पृथ्वी इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार हो गए, तुरंत अपने धनुष बाण उठा, और बाकी किसी को पता हो ना हो माता को पता पृथ्वी कौन है और पृथ्वी का शक्ति सीमा कितना है ना, नहीं बाकी किसी को पता हो ना हो, कोई पृथ्वी महाराज जानते नहीं होंगे, लेकिन धरती माता को तो पता है, क्योंकि पृथ्वी का जन्म भी बड़े रहस्यपूर्ण है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवत अवतार है, भगवान है। तो एक बार भगवान ने धरती माता को उद्धार की थी, जब धरती को हिरणाक्ष लेकर के वो गर्भसागर में फेंक दी, उस कीचड़ से उठा करके भगवान ने लाए थे। तो भगवान के शक्ति का परिचय है माता धरती को, कितने असाधारण शक्तिशाली भगवान है, अपने बराह रूप में अपने दांत के ऊपर संपूर्ण धरती को ऐसे उठा करके लाए जैसे आप कोई एक छोटा सा दाना सरसों को लेकर जाते हैं, अब कोई बहुत उठाकर यहां से जानती है कुछ भी नहीं से उठा कर ला रहे। तो जब उनको पता चला कि उन्होंने अभी राज रूप में वही भगवान स्वयं करके आए हैं, और उनको पता चल गया गड़बड़ी मेरा है, मेरी दोष है, तो और मेरे दोष का विरोध करने के लिए, मुझे सजा देने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र धारण किए। पृथ्वी महाराज को अस्त्र धारण करते देख करके धरती माता इतने भयभीत हो गई और डर के मारे भागी गई। वो जब भागी केवल कर कहां जाएगी, ये भी तो पता है कि एक महान सागर है, उनके सामने भाग कर कहां जाऊं, ये तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, उनके लिए कोई अगम्य स्थान नहीं है, क्योंकि भगवत अवतार है, कहां भागू। तो इसलिए धरती देवी ये सोचने लगी भाग कर तो के जाना, भागूंगा तो सही, नहीं तो सही सामना करने के लिए थोड़ा प्रयास तो करो, लेकिन बचने का और भी कुछ उपाय किया जाए, क्या। तो गाय के रूप इसलिए चुने कि गो अवध्य है। देखिए सृष्टि के शुरुआत में भी ये पता चलता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि गो अवध्य है, बाकी प्राणी को बद्ध कर सकते हैं, गाय को साधारणतः बद्ध नहीं किया जाता। ये गोमांस खाना पता नहीं कब से शुरू हो गया, ये पता चलता है कि तभी से गाय को धरती माता गाय के रूप इसलिए धारण किए कि उन्होंने, क्योंकि गाय को कोई नहीं मारते थे, गोबद्ध नहीं करते थे, तो बोले मैं इसे प्राणी के रूप धारण करूंगी, तो महाराज मुझे सोचेंगे नहीं अरे गाय है इसको कैसे मार सकती, बाकी किसी को मारा जा सकता है लेकिन गाय को कुछ भी करे सुमारना नहीं चाहिए, इसलिए विचार करके गाय के रूप धारण की। और क्योंकि गाय को ऊपर कोई कष्ट आए, उनको बद्ध करने के प्रयास किए, तो समझो धर्म का नाश हो रहा है। तो इसलिए जब इस धरती में सबसे पहले कलिजुग का प्रकट हुआ, कलिजुग प्रवेश किया, तो वो भी यही लक्षण दिखाई पड़ा था कि कली ने एक राजा बन करके, था तो शूद्र, राजा का वेश पहन करके सबसे पहले अटैक किया किसके ऊपर, गाय के ऊपर।
तो गाय के ऊपर जहां कष्ट होता है, जब गाय को बद्ध किया जाता है, समझो कलयुग वही है प्रकट यही है। जहां गो अत्याचार ज्यादा होता है, गो हिंसा होता है, तो वही प्रकट कलयुग विद्यमान है। तो ये तो भागवत से सबसे पहले बता गए, कलि का प्रवेश गाय के ऊपर अटैक करके होता है, बाकी किससे नहीं, एंट्री इसी में हुआ उनका, गाय को कष्ट दे करके, गाय और बैल को कष्ट दिया उन्हें, उनको रुलाते हुए आए। तो आजकल तो समाज में जहां देखो तहां गाय और बैल का दुर्दशा अवर्णनीय है, तो कलयुग का बुरा बोलबाल चल रहा है, ये प्रमाण है। परीक्षित महाराज जब देखे कि ये गाय को मार रहा है वो शूद्र ने, तो तुरंत उन्होंने भी अस्त्र धारण करके दौड़ पड़े। तो महाराज परीक्षित का शौर्य को देख करके कलि भी सरेंडर कर ली, सरेंडर कर लिया उन्होंने। लेकिन उन्हीं का ही स्वभाव था, सबसे पहले आया धरती पर, लैंडिंग किया तो फास्ट एक्शन गाय मारने लगा। अरे क्यों कली है? जितने गोबद्ध करने वाले, गो को कष्ट देने वाले सारे कली के चले हैं। तो यही तो भागवत सिखाता है। और इसलिए जो पूछा गया था गाय के रूप धरणी क्यों ग्रहण की, क्योंकि गाय के रूप लेने से जो बड़े बड़े क्षत्रिय जो सामर्थ्यवान पुरुष हैं, राजा हैं, जो नीतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, वो फिर गाय को कष्ट नहीं देंगे, गाय को नहीं मारेंगे, इसलिए धरती देवी गाय के रूप ले ली। गाय के रूप डर के मारे ले ली ये नहीं, वास्तविक धरती का जैसे प्रत्येक का तीन प्रकार के रूप होता है, एक आधि भौतिक रूप, एक आधि दैविक रूप, एक आधि आत्मिक रूप। तो धरती माता का जो आधि भौतिक रूप है, जो हम देखते हैं धरती है, ये प्लैनेट है, वो देवता के रूप में जो अधिष्ठात्री देवता है धरती के, वो है देवी गाय, गाय के रूप में। और आधि आत्मिक के रूप में वो तो भगवत पत्नी है, भगवान की पटरानी है। इस प्रकार से तीन रूप है। लेकिन गाय के रूप में जो हम देखते हैं भागवत में भी, जब बड़े बड़े असुर आकर के बड़े अत्याचार किए धरती पर, तब धरती भी गाय के रूप लेकर के ब्रह्मा के पास गई अपने एप्लीकेशन देने के लिए। और उनको इस गो रूप में भी उनको लेकर के सारे देवताओं ने भगवान के पास प्रार्थना किए थे। तो भगवान, तो जब भी संकट आता है धरती के ऊपर, तो धरती इस गो रूप को धारण करती है, क्योंकि ही उनके आधिदैविक रूप है। तो इसी रूप को धारण करके उन्हें भागने लगी। तो इससे ये शिक्षा प्राप्त होता है, सबसे पहले इसे जो ये श्लोक में कि प्रवेपमाना धरणी, कि धरणी की जो भय है, अब जो इतने भयभीत हो गई, तो इसमें से कोई भी समझ सकता है कि अभी तो जो बोलेगा सो करेगा, अब तो राजी हो जाएगा तुरंत। इतने डर गए कि भागने लगे, वो भाग करके गाय के रूप ली, क्योंकि भाग कर कहीं नहीं जा सकती। एक बात और मन में आता है, जब पृथ्वी भागी तो कहां पर भागी? स्वयं पृथ्वी भागने लगी, वह किसके ऊपर भागेगी? सरफेस क्या होगा? अब पृथ्वी महाराज उसके पीछे दौड़ेंगे, पृथ्वी के ऊपर दौड़ेंगे ना, और कहीं दौड़ेंगे? शून्य में दौड़ेंगे। तो पृथ्वी तो थी, लेकिन उनके अधिष्ठात्री देव के रूप में गाय बन करके भागी। पूरे पृथ्वी का जो मालकिन के रूप में जो गाय है असली, वही पृथ्वी के ऊपर भागने लगी गाय बन करके, और महाराज उनके पीछा करने लगे, छोड़े नहीं। तो इसमें पता चलता है कि कोई सामर्थ्यवान राजा को, जैसे पृथ्वी महाराज के राज्य का शुरुआत है, अगर ठीक ठीक से राज्य शासन करना हो, तो उनको इस प्रकार के शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति सामर्थ्यवान होना चाहिए। ऐसे कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो फिर शासन नहीं कर सकता। और इतने शक्ति होना चाहिए कि शत्रु को चैलेंज करे पर्सनली, ऐसे नहीं किसी को पृथ्वी महाराज ने किसी ऑर्डर दे सैनिकों को घेराव करो वो करो, नो पुलिस को बोले उसके नाम में केस किए, केस चलता रहे, नहीं, व्यक्ति रूप स्वयं उन्होंने अस्त्र धारण की, स्वयं का शक्ति इतने हो ताकि सभी थर थर कांप जाए, तब जाकर उचित शासन होगा। जब आप किस प्रकार अधिकार नहीं दिखा सकते, अपने पराक्रम नहीं दिखा सकते, भय नहीं दिखा सकते, शासन नहीं हो सकता। ये पृथ्वी महाराज जैसे आदर्श राजा, उनके राज्य के शुरुआत से ही उन्होंने दिखाए, राजेश शुरुआत से जैसे गद्दी नसीन हुए, सबसे पहले ये कष्ट, प्रजाओं के कष्ट देखे तो इमीडिएट अपने पराक्रम दिखाए। वो यही से पराक्रम कि समग्र धरती डर के मारे कांप करके भाग गई और सरेंडर करेगी भाई आगे चल करके, जिसकी धरती सरेंडर की, बाकी प्रजाओं के तो बात ही क्या है। आजकल तो गवर्नमेंट को कोई मानता ही नहीं, छोटे बच्चे भी लाइन कट जाने से गाली देंगे, ये सरकार ऐसा है, रास्ते में पत्थर गिरा सरकार ऐसा है, वो इधर गया सरकार। तो यही से मानो बाकी इतने इजी हो गया सरकार को क्रिटिसाइज करना, गाली देना, सरकार शक्ति तो है ही नहीं। सरकार जानते हैं पांच साल में इसे वोट नहीं देगा, यही गिर जाएगा, अब भेजें अब नहीं, क्या है उनका स्थिति, शक्ति है तो कैसे उचित शासन हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए शासन होता है इस प्रकार से, अधिकार और भय ये दोनों के द्वारा, जब इसे जहां भी देखा इससे उचित शासन, समुचित शासन होता है तो राजा इतने पराक्रमी होते हैं तो उनके भय के मारे सब ठीक ठीक चल रहा है। जहां कार्यकर्ताओं का इस प्रकार ये भय नहीं रहे तो फिर अपना मनमानी करेंगे, तब फिर तो सो गड़बड़ होने लगा। इसी पृथ्वी महाराज का आविर्भाव होने से पहले कहा गया, जो महाराज थे उनके पुत्र बैण जब राजा बना, और बैण राजा बनने से पहले उन्होंने सारे राज्य में चोर उच्चक आ गए थे, सब देश के अराजकता हो गया, राजा नहीं है तो सब लूटपाट चालू हो गए। जैसे राजा है तो फिर सब डर गए, राजा अगर स्ट्रांग राजा आ जाए तो सब डर जाएंगे, सब ठीक हो जाए। ऐसे शासक और पुलिस ऐसे लल्लू पंजू आ जाए तो कोई डरेंगे नहीं, सब करेंगे, अरे चलो आजकल कैसे भी आ जाए तो सब पैसा से, पैसा देकर पुलिस को जैसे भी तैसे कर सको, तो इसलिए सब चलते। जो धनी व्यक्ति हैं तो आइन को नहीं मानते, लेकिन ऐसे अगर कोई व्यक्ति हो जिसका सचमुच सामर्थ्य हो, पराक्रम हो, तो वो उचित शासन कर सकता है, उनके भय से ही शासन होगा। लोगों का अंदर और जो मंत्री और बाकी जनता के ऊपर, उनको अगर उनके मन में उनके प्रति भय नहीं रहेगा तो ठीक से काम नहीं करेंगे। हम सभी अपने ऊपर से लागू करके देख सकते हैं, जिसके ऊपर जिसको हम डरते हैं तो फिर उनको बोलने से पहले हम काम कर देते हैं, भाई पता नहीं क्या करें। जहां डर नहीं है, अरे रहने दो, क्या चलता है, चलेगा, हम सभी का स्वभाव है। लेकिन जहां डर है उनको तो भाई कैसे भी अलार्म देकर उठ जाएंगे, काम तो कर ही देंगे, बाद में देखा जाएगा। डर एक ऐसा चीज है, भय एक ऐसा चीज है, सभी को सही रास्ता में ले आता है। जहां भय नहीं, डर नहीं है तो खत्म। जबकि भक्तों का एक लक्षण में कहा गया भगवद गीता में, जब भक्तों के लक्षण भगवान बताते हैं तब कहते हैं कि अभयम सत्य संशुद्धि। देवताओं के जो जो संत का एक सबसे पहला बड़ा गुण होता है अभय, वो भय नहीं करते, निर्भय होते हैं। जब भगवान के भरोसे में रहे फिर उनको भय किसका है, भगवान मेरे प्रोटेक्टर है, वो अभय हो जाते हैं, निर्भय होते हैं। लेकिन वो अभय तो होते हैं लेकिन फिर भी एक भय रहता है, ये भय रहना बहुत ही जरूरी है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि दो जन को डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, बाकी किसी को नहीं डरना चाहिए। बोलते हैं कि हरि डरा और गुरु डरा, गुरु को और हरि को भय करना चाहिए, तभी आप उचित व्यक्ति बन सकते हैं, आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। बाकी किसी को भय करना आवश्यकता नहीं, निर्भय रहो। लेकिन अगर गुरु के लिए भय नहीं करेंगे और भगवान हरि के लिए भय नहीं करेंगे तब तो फर गए। ये दोनों भय अवश्य होना चाहिए, दोनों भय से ही हम निर्भय बन सकते हैं। कोई निर्भय पुरुष है तो यही दोनों भय रहता है, ये दोनों भय होना ही चाहिए। तो इस प्रकार आजकल बाकी सबको डरते हैं लेकिन ये दोनों को नहीं डरते। हाँ, मानते नहीं तो खुल्लम खुला बोलते हैं, बोलते हैं हम वेद के सत्य अर्थ को जानते हैं। क्या जानते हैं ना, भगवान के बारे में बता सकते हैं ना, बताऊंगा, आप भी भगवान हो, ये भी भगवान हो, बिल्ली कुत्ता पेड़ पौधे सब भगवान है, हम तुम सब भगवान है। अच्छा, केवल मंदिर में जिसको आरती करते ना उनको छोड़ करके बाकी ऑल भगवान, केवल भगवान को छोड़कर बाकी सारे भगवान है, भगवान भगवान नहीं है, ये उनके सिद्धांत है लो समझो। तो मतलब भगवान को डर नहीं रहे, उनको भगवान है लेकिन बोलते क्या लकड़ी है पत्थर है मेटल है वो के भगवान है। भगवान ही बोले वाह क्या करूं मेरे बेटा ऐसा है, और कुछ तो ऐसे ही है, इतने बड़े बड़े आध्यात्मवादी हैं, अरे मानते हैं भगवान को हमारे परम पिता है हमारे बालक है पोषक है भी मानते हैं शास्त्र पढ़ करके, और फिर क्या करना चाहिए आपके जो पिता है भगवान बताते माता पिता माता मह धाता सब कुछ मैं ही हूं, उसको ही पढ़ते हैं भाष्य लिखते हैं और फिर बोलते हैं मैं उस मेरे पिता परम पिता से मैं प्रवेश कर जाऊंगा उनकी सेवा नहीं करूंगा। सेवा करना चाहिए, ये गंदा काम है, सेवक बन के रहना जी 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 ये नहीं कर, क्या करूंगा ना दास के नाम तो नहीं लेंगे ना 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 ये बेकार है, उन्हें प्रवेश कर जाएंगे। आप थोड़ा सोचिए आपके पिताजी होंगे आपको कितने कष्ट करके खिलाए पिलाए बढ़ाए बचपन से इतने बड़े किए आप समर्थ हो गए, पिताजी वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध हो गए बोले बेटा मैं उठ नहीं सकता हूँ एक गिलास पानी ला सकता हूँ मुझे प्यास लगा पानी पीऊंगा, बोले पिताजी देखो मैं आपको बहुत मानता हूँ बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन पानी तो मैं नहीं लाऊंगा, फिर क्या करोगे ना मैं तो आपका आपका अंदर घुसना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, कैसे प्रसन्न करोगे मुझे ना आपके अंदर घुस जाऊंगा। पिता बोले अरे बेटा तू मेरे अंदर कैसे, नहीं तो मैं अंदर घुसूंगा मैं लीन हो जाऊंगा आपसे, अरे तू मेरे से कैसे लीन हो जाओगे मैं तेरे पिता हूं तुम्हारे ना नहीं नहीं मुझे तो लीन होना है ना नहीं, तो कैसे पिता सोचेंगे कैसे पुत्र धन्य है अब ऐसे कहेंगे जब तो कैसे चलेगा है ना नहीं। तो इस प्रकार भगवान के प्रति भय तो किसी सब खत्म हो गया, और गुरु जी की तो समझते हैं और कोई बाकी दोस्त भी साथ भी कोई भय रहता उनको तो वो इस प्रकार भी नहीं रहता, तो कैसे हमारा उद्धार होगा। तो बिना भय से कोई भी नहीं सुधर सकता ना कोई सटीक काम कर सकता है। तो आदिराज पृथु ने जब अपने शासन शुरू किए सबसे पहले ये अपने पराक्रम से इतने भय दिखाया कि समग्र धरती कांप गई, इतने डर गई कि थरथर थरथर कांप करके भागी, और भागी तो गाय रूप लेकर भागी ताकि मुझे मारे ना, इतने डर गई उन्होंने। तो तब जा करके उनके भय से पृथ्वी अब तक काम चल रही है ठीक ठाक। तो जब इतने शक्ति हो कि पृथ्वी की भी भयभीत कर सके डरा सके तब फिर सामान्य प्रजा और बाकी की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य ना हो तो कैसे शासन चलेगा, कौन मानेंगे, कोई नहीं मान सकते। तो अगर उचित शासन सब ठीक ठीक से हो तो वास्तविक रूप से ऐसे कोई व्यक्ति होना चाहिए जिनका अंदर इस इतने पुरुषार्थ इतने सामर्थ्य हो तो बिल्कुल भय भयभीत कर सके उन अंगतों को, तो उनके भय के कारण वो बिल्कुल सही काम जो नियम का पालन करे। आजकल जो सरकार के नियम है हम उसको आराम से तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं आएगा तो उसको पकड़ा देंगे पैसा उसमें देने से बड़ा डर नहीं, पैसा से काम ले लेंगे फिर डर क्यों रहेगा, डर नहीं रहेगा। चोर लोग चोरी करने जाते हैं सबसे पहले पुलिस से कंसल्ट कर लेते हैं। हाँ एक बार मुझे कोई बता रहा था वो तीन देश का तीन बड़े बड़े देश का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस के अधिकारी होते हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ, भेंटवा मिले उन्होंने, वो बातचीत कर रहे थे ऐसे अमेरिका है लंदन है और इंडिया है, तीन मिले मिलकर आपस से बातचीत कर रहे थे जो प्रतिरक्षा विभाग का सबसे बड़े बड़े अधिकारी है। अमेरिका वाले देखो हम इतने डेवलप कर चुके हैं इसी मामले में, कोई अगर चोरी डकैती होता है तो एक हफ्ता के अंदर तो पकड़ लेंगे, मैक्सिमम वन वीक पकड़ लेंगे, वन वीक में पकड़ लेंगे। तो लंदन वाले बोले वो कौन सा आप तो पीछे हैं अभी, हम आपसे और एडवांस कर चुके हैं। क्या एडवांस कहे ना हम तो एक दिन से तीन दिन ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पकड़ लेते हैं, एक दिन में पता लगा लेते हैं, तीन दिन में तो ला करके उनको दंडित कर ही डालेंगे ना। अच्छा यस हमारा सो फास्ट है तो ये बोला अच्छा आप इतने एडवांस है। इंडिया वाले बोले आप दोनों से बहुत पीछे हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इतने सख्त है, इतने एडवांस्ड है, हमसे ज्यादा एडवांस है, हम तो सुने कि बेकार है। अरे आप इंफॉर्मेशन सही नहीं सुने हमारा, ना क्या फिर आप कैसे ना, हमारा 15 दिन पहले पता चलता है। सॉरी आपको तो बाद में होता है, ऐसे हो सकता है? बोले खाओ नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, हम 100 एडवांस कर चुके हैं, इतने एडवांस कर चुके हैं हमारा डिपार्टमेंट, 15 दिन पहले हमको पता चला। पहले किसी चोरी हुआ ही नहीं पहले? हाँ पहले चोर हमारे पास आता है, बाद में चोरी करने जाता है। तो हमको पहले कहाँ इतने डाकू हम तो पता था, ये होगा ये क्या होगा इस पर क्या होगा, कोई बात नहीं देख लेंगे, हमारे पास लाओ जो फिर हम देखेंगे आपसे पैसा लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो समझ भी नहीं आया उनको, इतने बड़े बड़े अधिकारी बोले हाउ इट पॉसिबल ना, यही तो बात। हाँ बाद में चोरी होता है, बोले हमको तो 15 दिन पहले से पता है, उनका घर में चोरी होगा ये करेगा इसी से संभाल लेगा, सहारा हमारा भी इतने आएगा। सो एडवांस्ड है ना, तो कैसे शासन चलेगा? इस प्रकार जो अधिकारी हैं अगर इस प्रकार रहेंगे तो कैसे शासन होगा आचार भार? तो इसलिए भागवत से इसी ये हमको पता चलता है कि सरकार जो राज्य के जो प्रधान होंगे तो इतने शक्तिशाली होना चाहिए, इतने उनके पराक्रम होना चाहिए कि आपने व्यक्तिगत रूप से बिना किसी की सहायता से इसे पृथ्वी महाराज है, इतने शक्ति था कि पृथ्वी को चैलेंज किए और पृथ्वी की डर के मारे कंप गई और भागी, तो कैसे सरेंडर ना करे, कैसे काम नहीं होगी? और बाकी प्रजा तो एक बात बोलने एक बार सब ठीक ठीक काम चलेगा, हमको कितनी बार बोले अनाउंस करे नोटिस देखाए हाथ पकड़ कर बोले तभी जो किसो काम नहीं बने, डर ही नहीं, भय प्रिंसिपल है ही नहीं, तो कैसे होगा? तो जब तक कोई ऐसे व्यक्ति अधिकारी ना हो जो सभी के ऊपर इस भय को जागृत ना कर सके, तब तक फिर तो उचित प्रकार के शासन सही न्याय ये तो मिलना संभव नहीं, किसी प्रकार कोई न्याय हो नहीं सकता। ये पृथ्वी महाराज के राज्य की प्रारंभ से जो प्रकार एक्शन लिए थे, आगे चलकर उनके उनके लीला तो बहुत पढ़ेंगे, लेकिन इनका सबसे बड़े खूबी सबसे बड़े उनके जो गुण था विशेष गुण, कि इतने उनके सामर्थ्य था, इतने पराक्रम था, जो शुरुआत में आपने राज सिंहासन में बैठने के इमीडिएट फास्ट एक्शन है अपने अधिकार को दिखाए, वैसे अधिकार पराक्रम दिखाए कि पूरे समग्र धरती की हाल हो गई, ऐसे भागने लगी हिरण जैसे कोई उसके बाद पीछे कर रहे, बाप रे बाप डर के मारे भागे। तो ऐसे शासनकर्ता जो होंगे राजा, तो फिर राज्य बिल्कुल परफेक्ट ठीक ठीक सब चलेगा, यही उसका आगे से ही पता चल जाता है शुरू से। तो इस प्रकार महाराज पृथु का जो उनके पराक्रम है, उनके गुण है, जिसके द्वारा धरती की इस प्रकार के उन्होंने डराए और धरती ने उनके भय से गाय के रूप धारण की, तो इसलिए गाय भी पहले से पूज्य थी, नहीं तो धरती गाय के रूप क्यों धारण की? जब गाय का सम्मान और उनको पूज्य भाव और उनको बद्ध न करना ये सब बात पहले नहीं होता तो धरती नहीं करती थी गाय के रूप धारण, क्योंकि पहले से थी धरती गाय के रूप धारण करने से पहले धरती को पता थी कि गाय एक ऐसी रूप है जिसके ऊपर सभी का सहानुभूति होता है, कोई उसको अत्याचार नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, बद नहीं करेंगे, ये सृष्टि के शुरुआत से समय से था, इसलिए धरती देवी उन्हीं के यही रूप को चुनी। यद्यपि बहुरूपिणी कोई भी रूप ले सकती थी लेकिन ये गाय के रूप ली। लेकिन आजकल तो हम समाज देखते हैं कि सबसे अत्याचार बिचारे निरीह गाय के ऊपर होते हैं, जब से हमारा वो ट्रैक्टर आ गया हमारा एडवांसमेंट, तो फिर बैल के किस काम के लिए भाई? भाई 100 बैल जो काम करेंगे एक ट्रैक्टर इतना काम कर लेंगे, उससे ज्यादा कर लेगा तो, है ना? तो कोई काहे को बैल को रखेंगे, ये हमारे एडवांसमेंट है ना? जो हम शास्त्र आदि सीखते हैं कि जिनको हमेशा के लिए सृष्टि के आरंभ से सम्मान करना चाहिए, बधने करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, इसी से हमारा शांति, इसी से हमारा लाभ है। तो हम उनको केयरलेस, अब क्या करेंगे, पालेंगे नहीं, उसे छोड़ देंगे, बस काट कर खाओ, चुकर मन उनके ऊपर अत्याचार करो, ऐसे करते हैं। तो ये कली का विकट प्रभाव है। जब समाज में गौ माता का स्थान उच्च में रहे, उसके ऊपर कोई अत्याचार ना करे, प्रसन्न रहे, ऐसे भी शास्त्र में देखा जाता है, जहां गाय और बैल खुशी में घूमते हैं रास्ता में इधर उधर, तो समझो को ही धर्म है, कोई धर्म पालन करने वाले है। जहां गाय के व्रत से रोती है गाय और बैल, समझना धर्म है नहीं, ये शास्त्र का वचन है किसी से, क्योंकि धर्म जो है वो बैल है और धरती है गाय है, ये दोनों खुशी नहीं होंगे तो फिर कैसे आप खुशी हो सकते हैं। तो आजकल संसार में तो आपको पता है किस प्रकार की दशा है। तो इस प्रकार के इस भागवत की शिक्षा से किस प्रकार राज्य में शासन होना चाहिए, किस प्रकार नियम होना चाहिए, और किस प्रकार गाय के प्रति पूज्य भाव सम्मान और उनके ऊपर अत्याचार ना होना चाहिए, इस प्रकार के शिक्षा भागवत संघ प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। ऐसा सुनने ऐसा बोला गया है कि भय बिन होत ना प्रीत, भय बिन होत ना प्रीत।
हाँ, भय बिन ना हो प्रीत,
भय के
बिना प्रीत नहीं होता।
यस। अच्छा। तो अब ये भी है कि अलग अलग भक्त लोग भगवान की शरण में आते हैं, जैसा हम बताते हैं कि कुछ लोग भय के कारण आते हैं भगवान की शरण में, कुछ लोग अपना दायित्व कर्तव्य समझ करके, ड्यूटी समझ करके आते हैं, कुछ लोग ज्ञान से और कुछ अल्टीमेटली प्रेमवश स्वतः ही। तो भक्ति का प्रारंभ क्या भय से प्रारंभ होता है क्या?
हाँ, भय से ही होता है, भय से सब कुछ का शुरुआत होता है, यही तो विधि है। विधि पालन करते हैं भय के कारण, अब विधि करते करते फिर आप सहज हो जाते हैं, नेचुरल हो जाता है, ये जो सहज भाव आता है शुरुआत यहीं से होगा। हाँ जी, हाँ, शास्त्र भयम, शास्त्र के भय करके ऐसे करते हैं, यही तो विधि है, सब डरते हैं। जय श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज संभव। कोई पूछना है क्या? ओके, बोले। जी, ये दो डर के बारे में बताया ना, कि क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो भगवान के शरण में आया वो निर्भय हो जाता है ना, नहीं, अभय शरणारविंद रे, भगवान के शरण में फिर भय क्या है? लेकिन भय नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों को भय रखना चाहिए, इन दोनों को भय नहीं रखेंगे तो आपकी स्थिति गड़बड़ है। डर की भावना होना चाहिए, आपको डर कभी किए ना, नहीं डरते ना, नहीं। हाँ, जिसको दूसरे को ना डर करके उनको डरना चाहिए कि अगर मैं गुरु के चरण में कुछ अपराध करूं कि गुरु की सेवा ना करूं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ये भय होना चाहिए। आप बोलेंगे अरे छोड़ो यार, डर नहीं करेंगे तो आपका नाश हो गया सब। इस प्रकार हरि के उनके प्रति भय रहना चाहिए कि अगर हरि के प्रति मैं सेवा ना करूं, हरि के नियम को न मानू, स्वयं गुरु जी से साक्षात हरि जी से, ये होना चाहिए। वो होगा तो सारे नियम को ठीक ठाक आप करेंगे, नहीं तो आप केयरलेस हो जाएंगे, है ना।